ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथक विधा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तात्पर्य जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। एक बात है कि हम लोग प्रभुपाद का तात्पर्य तो बहुत बड़ा है, तो पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य की चर्चा करते हैं। बहुत बड़ा तात्पर्य। ओके, एक चीज महत्वपूर्ण है कि जो बुद्धि है वो भगवान के द्वारा उत्पन्न है, अर्थात बुद्धि के द्वारा आप भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धि जो है आचार्य समझाते हैं सत्व गुण की वजह से आती है, और सत्व गुण में भी भगवान को समझा नहीं जा सकता। भगवान को पूरी तरह समझा जा सकता है विशुद्ध सत्व अवस्था में, जो कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति उस अवस्था में स्थित होता है। तो भगवान का स्वरूप भक्ति के द्वारा प्रकट होता है। इसको माइक को थोड़ा सा, स्पीकर को थोड़ा कम कीजिएगा। तो भगवान का स्वरूप भक्ति के द्वारा प्रकट होता है हृदय में। तो वो चर्चा हम अगर देखते हैं, समय मिलेगा तो करेंगे। अभी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ये सब आचार्य भी इसी प्रकार से इसको समझाते हैं। नीर क्षीर का विवेक का अर्थ होता है क्या सही है क्या गलत है। मन प्रायः गलत चीज़ों के पीछे जाता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा ना हम निर्णय कर पाते हैं कि सही क्या है। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ज्ञान का एकमात्र अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। आप लोग देखते हैं कि इस जगत में ज्ञान का अर्थ होता है पदार्थ को कैसे अच्छे से भोगें, ये ज्ञान। लेकिन एक्चुअली इस प्रकार के ज्ञान से वास्तविक रूप से हमारे हृदय में अज्ञान बढ़ जाता है और व्यक्ति और दैहिक चेतना से ग्रस्त हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब व्यक्ति ये ज्ञान इकट्ठा करता है कि कैसे वो इंद्रिय तृप्ति अधिक कर सकता है, वो करेगा इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा, और उसके ये आवरण कि वो शरीर है वो और मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्ञान नहीं है और प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ उसे इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई समझाना नहीं है। ओके, असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। दिव्य दर्शन मतलब, दर्शन का अर्थ है फिलॉसफी सिद्धांत। एक शब्द बड़ा अच्छा समझ में आया, दिव्य का अर्थ होता है वन हु प्लेज, जो खेलता है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम अर्थात भगवान के जो कर्म हैं दे आर हिज प्ले। प्ले मतलब भगवान को आनंद आता है, जैसे खेलने में बच्चों को आनंद आता है, उसी प्रकार से भगवान को अपनी लीला करने में आनंद आता है। कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता, कोई बाध्यता से नहीं करता है, व्यक्ति जब खेलता है तो व्यक्ति आनंद के लिए खेलता है, न कि कोई व्यक्ति जैसे कि नौकरी करने जाते तो ये नहीं कह रहे कि हम खेलने जा रहे हैं। आप खेलने जाते थे? तो हम बाध्यता के कारण जाते हैं, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते। तो उसे समझ लेना चाहिए कि दिव्यम अर्थात भगवान के जो कर्म है वो भगवान की लीला है, आनंद है। खैर, दिव्य दर्शन को समझता है वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए, आंख मूंद कर कुछ स्वीकार ना करने का अर्थ है कि कर ये नहीं है कि आंख मूंद करके सब कुछ रिजेक्ट भी कर देना चाहिए। समझ रहे हैं इसका अर्थ कि सब कुछ बकवास है, सब कुछ खराब है, ये नहीं है। और मैं इस पर विचार कर रहा था कि कलयुग में किसी पे विश्वास करना ये बहुत मुश्किल है। उसका कारण क्या है कि कलयुग में हाइपोक्रेसी, धोखेबाजी बहुत ज़्यादा है, और केवल ये साधु समाज में नहीं है, सभी जगह है। टीचर्स भी धोखेबाजी कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शैक्षिक ज्ञान, ज्ञान का उद्देश्य है लोगों का चरित्र निर्माण या उनको कुछ आत्मा और पदार्थ का विज्ञान के बारे में बताएं, वो तो कुछ बताते नहीं है, और केवल पेट पालने का ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रकार से लोगों का विश्वास उठ जाता है किसी भी हायर अथॉरिटीज के ऊपर, क्योंकि सही तरह से दिशा उनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती। फिर भी आध्यात्मिक विषयों में ध्यान पूर्वक सुन करके समझने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, संशय होना गड़बड़ नहीं है, लेकिन संशय का निवारण होना बहुत आवश्यक है। कोई संशय है तो उसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, लेकिन टीचर में श्रद्धा होनी चाहिए और शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, ओके। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। और अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई आइडिया? उसी के बारे में सोचता रहेगा, भगवान का भजन कब करेगा। दुनिया में हमेशा हर व्यक्ति को सम्मान प्राप्त नहीं होता है, हर समय, हर समय और हर जगह हर व्यक्ति आपको सम्मान नहीं देगा। तो अगर व्यक्ति बहुत सम्मान की अपेक्षा करेगा, सहिष्णु नहीं हो पाएगा, तो उसकी भक्ति जो है बाधा आ जाएगी, भक्ति करने में बाधा आ जाएगी। सिद्धि की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। देखिए, एक एक लाइन अगर आप देखेंगे, ये गीता भूषण से प्रभुपाद एकदम एग्जैक्ट कोट कर रहे हैं, एग्जैक्ट। आज मैं पढ़ रहा था, एकदम सेम टू सेम। सत्य का अर्थ क्या बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तथ्यों को सही रूप में प्रकट करना। हम सही रूप में क्यों नहीं प्रकट करेंगे? एक कारण तो ये है कि हमको पता नहीं रहेगा, फिर हम कहेंगे भाई हमारा विचार ऐसा है। और दूसरा, हमें पता रहेगा लेकिन हम अगर ये सोचेंगे कि मैं इनको बता दूंगा तो ये मेरे अधीन नहीं रहेंगे। अधीन से मेरा मतलब है कि ही विल बी एबल टू थिंक, इनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लोगों को आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो अगर आप उनको इंद्रिय तृप्ति, उनके जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति बना दो और फिर आप बस उनको इंद्रिय तृप्ति ही देते रहिए। जैसे कि लोग बहुत मेहनत करते हैं पैसे के लिए, तो उनके जीवन के लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, तो पैसे दे करके उनसे कोई भी काम कराया जा सकता है। आप महसूस कर रहे हैं इस बात को? लेकिन अगर आप उनको बताओ इंद्रिय निग्रह करना है तो उनकी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, तो आपके लिए काम ही नहीं करेंगे, एटलीस्ट फालतू काम नहीं करेंगे आपके लिए। मेक सेंस? तो लोगों को सोचने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लोग सोचे नहीं किसी भी तरह से। हम इनके स्कूल में क्लास दे रहे थे तो कुछ पेरेंट आकर बोले, हमारे बच्चों को आप ब्राह्मण बनाना चाहते हैं? जैसे कोई बहुत बुरी बात कर रहे हो कि ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मणिकल कल्चर बताए हैं, विज्ञान दें अज्ञान दें, तो बहुत मतलब बुरा मान जाते। ठीक है, तो आगे पढ़ा जाता है। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। जैसे सभी भगवान हैं, अब ये बात लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जो देवता उनको इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, अगर कोई कहे कि वो भी भगवान है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व मतलब उनकी वो आराम से अज्ञान में पड़े रह सकते हैं, लेकिन कोई सही से बताए कि भाई नहीं, ये भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो तो उसमें लोग स्वीकार नहीं करते। ठीक है, सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है, अर्थात ये निंदा नहीं है। कि कभी कभी लोग सोचते थे कि प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग जो है वो सत्य को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस सृष्टि में स्पष्ट रूप से एक सृष्टिकर्ता होना चाहिए, लेकिन बार बार क्या बोलते हैं, वो बम का विस्फोट हुआ है और सब कुछ प्रकट हो गया। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। जैसे कि चार नियमों को ठीक ठीक से नहीं बताते हैं लोग, अवैध त्रिसंग का अर्थ क्या है उसमें लोग चुप हो जाते हैं, आधी बात बताते हैं। क्यों? ताकि जो उनके जो चेले हैं वो भाग ना जाए। हाँ, तो ये चीज है। तो इस प्रकार से छुपाना नहीं चाहिए सत्य को, बताना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग रियली बहुत इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो। ठीक है, दमह का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये थोड़ा समझ लीजिए इस चीज को कि इंद्रिय भोग जो है वो नमक की तरह है। नमक खाने में बहुत ज्यादा भी गड़बड़ है और बहुत कम भी गड़बड़ है। तो साधक है, अगर उसे थोड़ा सा भी इंद्रिय भोग प्राप्त नहीं होगा तो उसका मन विचलित होने लगता है। अर्थात कम से कम भगवान का प्रसाद मिल जाए थोड़ा अच्छा, थोड़ा सोने को मिल जाए, जितना जो आवश्यक है ये नहीं। लेकिन बहुत अधिक अगर इसमें हमारा अभिनिवेश होगा तो क्या दिक्कत आएगी? माइक पे बोलिए।
भक्ति के लिए समय ही नहीं रखते।
हाँ, भक्ति के लिए समय नहीं होगा। अगर हर समय उसका अभिनिवेश ये है कि मैं कहाँ खाऊंगा, कैसे सोऊंगा, तो फिर भजन के लिए कब समय मिल पाएगा? हम लोग का एक अनुभव है कि हम लोग जब बस पार्टी में थे तो एक भक्त जब ब्रेकफास्ट ले रहे होते थे, पूरा भी नहीं किए, वो पूछने लगते आज दोपहर में क्या बनेगा। तब उसका उस भक्त का ये पूरा अभिनिवेश यही था कि आज खाने में क्या मिलेगा, आज खाने में क्या मिलेगा। ठीक है, उसकी वो चेतना उस समय थी उस प्रकार से, लेकिन ये चीज़ भजन में बड़ा बाधा देती है। प्रायः जो भगवान की कृपा से मिल जाए, और धीरे धीरे महसूस भी होगा कि आज का भोजन जो है भगवान की व्यवस्था से मिला है, और ये भोजन जो आज आया है ये भी भगवान की व्यवस्था से है, स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। एक बारे में अच्छा है कि हमारा जो कृष्ण प्रेम है, भक्ति है, वो धन की तरह है और इंद्रियां दस्यु की तरह है, डकैत की तरह है। तो आपके पास बहुत बड़ा धन हो, जैसे हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके घर में सोना था, तो अभी कुछ दिन पहले उनके घर में डकैत आ गए थे, तो बहुत घबरा गए थे वो और सहायता मांगने लग गए कि अरे डकैत आए, डकैत आए। लेकिन हमारी इंद्रियां के संग हम घूमते ही रहते हैं कि नहीं, आँख कान नाक सब कुछ। तो ये डकैत हमारे ज्ञान को, हमारे हृदय में जो प्रेम है उसको पूरा खींच लेंगे, इससे घबराना चाहिए। घबराना मतलब सतर्क रहना चाहिए। तो इंद्रियों को अगर हम मतलब कह सकते हैं कंट्रोल नहीं करेंगे तो भक्ति में प्रगति मुश्किल आएगी। इसको थोड़ा सा दरवाजे को बंद कीजिएगा। ओके, इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसे शम कहते हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, अदृष्टात अश्रुतात भावात न भावो उपजायत। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो मैंने याद किया कि जिन चीज़ों को हम देखते नहीं हैं, जिनको हम सुनते नहीं हैं, वहाँ पे कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इंद्रियों का शमन नहीं होगा तो इंद्रियों का दमन नहीं होगा तो मन का शमन नहीं होगा। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि इंद्रियों का दमन का मतलब ऐसे दमन करना पड़ेगा जैसे शत्रुओं का दमन किया जाता है। दमन शब्द का प्रयोग शत्रुओं के लिए ही होता है, याद है कि नहीं? है कि नहीं? अरि दमन शब्द आता है। तो ऐसा इसका अर्थ यह है कि इंद्रियां जहां भाग रही हैं उनको भागने देना नहीं है, उसको अपने वश में करके और भगवान की सेवा में लगाना है। दमन शब्द अच्छा है, मतलब इट रिक्वायर्स सम फोर्स। और फोर्स आ रहा है बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, कि मेरे लिए सही क्या और गलत क्या. एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऑल्सो मर्सी ऑफ कृष्णा, भगवान की कृपा. अगर भगवान हमें उच्चतर रस देंगे तभी हमारी इंद्रियां फिर उधर जा पाएंगे. ये भी इंपॉर्टेंट बात है. तो जब इंद्रियों के द्वारा भोजन मिलता है मन को, तभी मन उन विषयों पर नाचता रहता है. आज मैं एक विचार कर रहा था, मैं ऑफिस में बैठा था, बहुत मुख्य बात है आज, कि वो विचार, वो वार्ता मैं सुन नहीं रहा था और समझ भी नहीं रहा था, लेकिन मैं उस वाइब्रेशन में मौजूद था. और मेरे हिसाब से वो मटेरियल वाइब्रेशन था, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी सेवा में कोई बाधा, मतलब सेवा में कोई लाभ नहीं दे रहा था. जैसे हरि कथा ना समझ में आए, उस वाइब्रेशन में रहने से हम शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही मटेरियल वाइब्रेशन हम समझे नहीं तो भी उसको कान में जा रहा है तो हमारा चित्त उससे दूषित हो जाता है. तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए. इस कलयुग में संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रकार के दूषित वातावरण से, दूषित चीज़ों से बचें. ये चीज़ आचार्य लोग भी समझाते हैं. मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए. वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है. और मैंने कोटेशन पढ़ा था कि भगवान का चिंतन अगर एक क्षण के लिए भी ना हो तो व्यक्ति को रोना चाहिए, जिस प्रकार से व्यक्ति रोता है अपना धन चोरों के द्वारा लूट लिए जाने के ऊपर. अगर एक क्षण के लिए भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो हमको इतना रोना चाहिए जितना कि कोई धन चोरी हो जाने पर रोता है. रोते हैं कि नहीं? 100 रुपये चोरी हो जाएगा तो रोता है कि नहीं? बड़ा कठिन एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग तो कितना हंसते रहते ना आराम से, और हमारा जो सूर्य समय रूपी धन है वो जाता रहता है. लेकिन धन अर्जन के चिंतन में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है. और आप ये देखिए कि भगवान में अगर मन लगाया तो लाभ देख रहे हैं कितना है. कहाँ चले जाएंगे आप? भगवान के धाम. और उसका उपयोग हम जो है सोचें कि हाँ से धन आएगा, कहाँ से धन आएगा, ये कहाँ से आएगा, तो ये उचित नहीं है एक्चुअली. इंटरेस्टिंग है कि धन कमाने में क्लेश होता है, रखने में क्लेश होता है, खर्च करने में क्लेश होता है, बचाए रखने में क्लेश होता है. यानी धन का चिंतन कर रहे हैं तो हम क्लेश का चिंतन कर रहे हैं, क्लेश नहीं आया. समझ रहे हैं कि नहीं? धन प्राप्ति में, रखने में, खर्च करने में, सब में क्लेश होता है, तो आदमी धन का चिंतन करता रहे कि धन नहीं आया, धन नहीं आया, मतलब दुख नहीं आया, क्लेश नहीं आया. कैसे क्लेश आएगा? बड़ा परेशान हूं मैं बहुत परेशान हूं कि परेशानी नहीं आई मेरे पास. ठीक, यह अच्छा. मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए. मनुष्यों की मूल आवश्यकता क्या है? शास्त्र से क्या कोट कर सकते हैं आप? हिंदू नाते विदुह स्वार्थ गतिम ही विष्णु. और अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ का अर्थ होता है सुख जहां से मिलता है. सब सर्वश्रेष्ठ सुख है भगवान विष्णु के चरण में, ये लोग को पता नहीं है. और हमें इसे प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात शास्त्रों से प्रस्तुत करना चाहिए. ठीक है, शास्त्र मर्मज्ञों साधु पुरुषों, किताब में देखिएगा, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए. ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है. जब तक एक भक्त का संग किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसकी विचार शक्ति एक सर्किल में ही घूमती है. और वो सर्किल है, सर्किल के चार पॉइंट होते हैं ना, क्वाड्रेंट्स. तो चार पॉइंट क्या हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी में घूमता रहता बस. बड़े आश्चर्य की बात है कि इससे बाहर घूम ही नहीं सकता, बाहर जा ही नहीं सकता. वो तो केवल भक्तों का संग जब उसे प्राप्त होगा तब उसकी विचार शक्ति भगवान की तरफ जाएगी. महाराज जी संबंध में वसुदेव जी नहीं, अक्रूर जी के बारे में बोल रहे थे. महामना, महामना शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा है. हर व्यक्ति किसी ना किसी को अपने हृदय में धारण किए रहता है हर समय, है ना? हर व्यक्ति किसी ना किसी का स्मरण कर रहा है हर क्षण. तो व्यक्ति कौन होना चाहिए? कृष्ण. तो ये शक्ति कहाँ से, विचार शक्ति कहाँ से बढ़ती है, जब व्यक्ति भक्तों का संग करता है। ओके, जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुख है, इस प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। देखिए, भौतिकतावादी लोगों के लिए सुख और दुख क्या होता है? इंद्रिय सुख। लेकिन भक्तों के लिए सुख और दुख का क्या, बहुत सुंदर डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दी है, और यानी कि जो आपके लिए भक्ति के लिए अनुकूल हो उससे उसे सुख मानना चाहिए, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो दुख मानना चाहिए। जैसे मंगल आरती में सोते रहना ये सुख है? सुख है नहीं है? प्राय लोगों के लिए सुख है कि नहीं है? ये 4 बजे सोते रहना, तो ये 4, आपको अगर कष्ट है तो आप कुर्सी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो है प्राय लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सुख है, लेकिन भक्तों के लिए सुख क्या है? सुबह उठ करके स्नान करके भगवान के पास। अब देख रहे हैं ना, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, जो लोगों के लिए निद्रा है क्या रात है, वो संयम पुरुष के लिए दिन है, और वाइस वर्सा। और अब भक्तों का संग हो, उनका दर्शन भी हो और उनकी वार्ता सुनने को मिल जाए, तो ये भक्त के लिए बहुत कष्टकारी है। और इसके विपरीत एक अभक्त के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये क्या चर्चा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बड़ा बहुत परेशानी होती है। तो इन दोनों का परिमाण अलग है। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। ये तो शरणागति का विलक्षण है। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है, इसकी व्याख्या हम भगवद्गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं, जो मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं लगी, उसको मैं कुछ समझा नहीं रहा। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय, हाँ बहुत अच्छा, भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस संबंध में कि भय व्यक्ति को होता है तब जब वो सोचता है कि इस चीज से मुझे दुख मिलेगा। कितना विचारणीय बात है ना, इस चीज से मुझे भविष्य में दुख मिलेगा, इसकी वजह से लोगों को भय होता है। और भक्तों को भय क्यों नहीं होता है? क्योंकि जानते हैं कि वो कृष्ण की शरणागत हैं और कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और भय जो आएगा भी मेरे जीवन में वो भगवान की कृपा से बहुत कम आएगा, और जो भी आएगा वो मेरे हृदय के शुद्धिकरण के लिए अत्यावश्यक होगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जो भी जीवन में कष्ट आएगा वो मेरे कर्मों के अनुसार नहीं, भगवान की व्यवस्था के अनुसार होगा, और वो मेरे हृदय के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक होगा, भले ही मैं उसको समझ पाऊं या ना समझ पाऊं, क्योंकि ये चीज शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार भक्त समझता है कि भक्त के जीवन में कर्म के अनुसार नहीं आता है, भगवान की कृपा के अनुसार आता है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है, फलस्वरूप उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा, फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता, हाँ एक और बात है कि चिंता से मुक्त होना, खैर आगे आएगा कि अगर वो उस सतो वो जो निर्भयता है, मेरे जब आएगा तो समझा दूंगा, वैसे जब निर्भयता होती है, निर्भयता रजगुण तमोगुण और सत्वगुण के अनुसार भी होती है। ज्ञान से व्यक्ति निर्भय हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, सत्वगुण में या विशुद्ध सत्व, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। रजगुणी व्यक्ति भी निर्भय होगा, टेररिस्ट बहुत रजगुणी होते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भी निर्भय होता है, अरे मरेंगे देखा जाएगा, अभी शराब पीने लग दो। तो तीनों प्रकार की निर्भयता क्या एक ही स्तर की है? सतगुणी निर्भयता जो है वो ज्ञान के आधार पे है कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। और रजोगुणी लोग जैसे हैं वो भी, जैसे क्षत्रिय हैं वो भी निर्भय होते हैं, लेकिन वो चीज रजोगुण से उत्पन्न है, समझ रहे ना। और कोई शराब पी के पड़ा हुआ टल्ली, अरे मरेंगे तो मरेंगे, तो वो भी निर्भय है, लेकिन वो निर्भयता तामसिक है। बहुत अच्छा सब बताया गया था, ठीक है, ओके। फलस्वरूप हमने पढ़ लिया इसको। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय ये है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भयम द्वितीया भिनिवेश तस्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। एक इंटरेस्टिंग बात है जो प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है, भयम द्वितीया भिनिवेश तस्यात् ईशाद अपितस्य विपर्यो स्मृति। यहाँ पे माया पाश में फंस जाने का अर्थ क्या होता है समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ होता है माया की दो शक्तियों से प्रभावित होना, और वो होता है प्रक्षेपात्मिक और आवरणात्मिक। आवरण मतलब ढक देना, प्रक्षेपात्मा मतलब फेंक देना कहीं। तो आवरणात्मक का अर्थ है अपने स्वरूप को हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, समझ में आया, हमारा स्वरूप ढक जाता है। और प्रक्षेपात्मक का अर्थ है कि जो नहीं है उससे दूर फेंक दिया जाता है और उस पर विश्वास करते हैं कि हम वो हैं। समझ कीजिएगा, जो हैं उस अवस्था से अपने स्वरूप से दूर होकर के, विच्युत होकर के जो नहीं है उसमें अभिनिवेश हो जाता है। जैसे हम लोग भगवान कृष्ण के अंश हैं, हमारा संबंध भगवान कृष्ण से है, उसको तो माया ढक लेती है आवरण आत्मिका शक्ति, और प्रक्षिप आत्मिका शक्ति के द्वारा इस शरीर में हमारा अभिनिवेश करा देती है, जिसकी वजह से हम लोग भयभीत होते हैं, क्योंकि शरीर तो निरंतर परिवर्तनशील है, और जब हम ये मानेंगे कि हम ये शरीर हैं तो हम भय से ग्रस्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग, आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका, ठीक। तो जब हम लोग कृष्ण भावना के अनुशीलन के द्वारा ये अनुभव करते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग केवल सत्वगुण का अनुशीलन नहीं करते कि हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं है। कृष्ण भावना के डायरेक्ट अनुशीलन के द्वारा, भगवान का नाम जप करने के द्वारा, भगवान की भक्ति करने के द्वारा सहज रूप से उनकी अविद्या का नाश होता है, और वो अनुभव कर पाते हैं कि वो कृष्ण के अंश हैं, ना सिर्फ देह नहीं है, ऐसा नहीं है, वो देह नहीं है साथ साथ कृष्ण के अंश हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े व्यक्ति का पेटा होता है तो बड़ा सीना चौड़ा करके चलता है, क्यों, क्योंकि अगर वो कुछ गलत भी करता है तो जानता है कि उसके पिता या जो भी उसके ऊपर हाथ रखने वाले हैं वो उसकी रक्षा करेंगे। तो खैर भक्तों कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में सहज विश्वास होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट कॉन्फिडेंस, कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि भक्त लोग फियरलेस होते हैं लेकिन फूलिश नहीं होते, मूर्ख नहीं होते, निर्भय होते हैं लेकिन मूर्ख नहीं होते हैं। निर्भय होने का अर्थ ये नहीं कि ट्रक आ रहा है और आप कहें भाई अब तो कृष्ण के दास हो, क्या चिंता करने की जरूरत है, आप ट्रक के सामने जाओ, तो ये मूर्खता है। लेकिन निर्भयता का अर्थ है कि भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक अनेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। नते विधु स्वार्थ गतम ही विष्णु, अंधा यथान्देर उपनीय माना। ये बड़ा मजेदार है, अगर कोई अंधा दूसरे अंधे के कंधे पे हाथ रख करके माने कि मुझे बहुत बढ़िया गाइडेंस मिल रही है, बहुत बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, सही जगह लेके जाएंगे हमको, तो क्या आप लोगों को उन पे दया आएगी कि नहीं? तो जो सो कॉल्ड समाज के लीडर हैं उनको भी पता नहीं है नते विदु स्वार्थ गते में विष्णु, कि भगवान विष्णु की आराधना करने से ही जीव का कल्याण होगा। तो अपने अपने जो कह सकते हैं चेले हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ हैं, उनको इस बात पे फोकस नहीं करते। प्राय बोलते हैं ना कि बेटा पढ़ाई करो, भक्ति तो करते ही रहना, लेकिन मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बेटा भक्ति करो, पढ़ाई तो करते रहना, ये होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से मृत्यु नहीं बचने, मृत्यु नहीं टलने वाली, ये मुख्य बात है, उसको मिस कर रहे हैं लोग। महाराज जी संबंध में बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो केवल शोक सभा कर सकते हैं मिनिस्टर लोग। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेन लड़ने वाली हो तो पहले से मालूम चल जाए और मिनिस्टर साहब रोक दें, या कहीं आग लग जाए या भूकंप आ जाए तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक सच्चा लीडर है, उसकी ये योग्यता होनी चाहिए कि वह स्वयं कृष्ण के शरणागत हो और जो भी उसके मतलब मार्गदर्शन में हो उन्हें बताएं कि आप भी कृष्ण की शरण लो, हम आपकी आप इंडिपेंडेंटली कोई मदद नहीं कर सकते। डजंट मेक सेंस? एक गुरु ये को कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं स्वतंत्र रूप से आपकी रक्षा कर सकता हूँ। रक्षा करने का अर्थ है मैं आपको उपदेश दे सकता हूँ किस प्रकार से आप कृष्ण के शरणागत हों और कृष्ण आपकी रक्षा कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? और ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आप श्रीमद् भागवत में सुन रहे हैं भवाटवी, भवाटवी का मतलब है इस जन्म मृत्यु रूपी जंगल में व्यक्ति फंसा हुआ है, तो उसमें कोई अगर व्यक्ति को रास्ता बता दे कि भाई तुम इस रास्ते से चलोगे तो इस जंगल से बाहर निकल जाओगे, तो क्या ये उपकार है या नहीं है? वास्तविक रूप से यही सबसे बड़ा उपकार है कि आप बहुत फंसे हुए हैं, देखो कुछ मत करो, बस सीधे चलो इस रास्ते पे तो तुम पार हो जाओगे। बहुत बार होता है हम लोग जंगल में ना हो कहीं सिटी में भी घूम जाते हैं तो व्यक्ति कहता है आप परेशान मत होइए, देखिए ये रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते पे सीधे चलिए, अपने गंतव्य को आप पहुंच जाएंगे। तो गुरु का कार्य यही है कि लोगों को सही शिक्षा दे कि किस प्रकार से अपने जीवन को ऐसे ढालें कि वो हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण कर सके। ये सबसे बड़ा उपकार है किसी के भी ऊपर। ठीक है, तो अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। यही बात कर रहे थे हम लोग शिक्षा के बारे में। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है, ये गलत लिखा है, गलत अच्छा ऐसा आजकल के समाज के अनुसार से गलत लिखा है। अगर बोला जाए कि मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है तो इसका कितना प्रतिशत समय आत्म साक्षात्कार के लिए होना चाहिए? 100%। समझ गए ना? तो जैसे आजकल की लोग की धारणा है, अरे भाई 10 मिनट भजन कर लो बहुत हो गया, या वृद्धावस्था में भजन कर लो, तो ये समझ नहीं रहे कि मानव जीवन भोग के लिए एक्चुअली मिला ही नहीं है, क्योंकि भोग करने की शक्ति मानवों में सबसे कम है। अगर अन्य जानवरों से आप देखें तो आहार निद्रा भय मैथुन में, तो किस में क्या चीज़ मिला है मानव जीवन की क्या स्पेशल क्वालिटी है आप लोगों को पता है जो जानवर नहीं कर सकते हैं? जिज्ञासा और तपस्या। ठीक है, ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि जानवर भी आहार निद्रा भय मैथुन की जिज्ञासा से सुबह से ही युक्त हो जाते हैं, तो ब्रह्म जिज्ञासा और तपस्या। अतः कोई ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ है अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए, जैसे हमने सीखा है। तो अगर कोई भगवान के बारे में सुनता है सच्चा ज्ञान और उसको दुख होता है, दुख का मतलब है परेशान हो जाता है, बेचारा आराम से भोग रहा था इंद्रिय तृप्ति और आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या ये हिंसा है? क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि अबे हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम अपने भजन करो, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं डिस्टर्ब उनको? क्योंकि वो अपने लिए घातक कार्य कर रहे हैं, जहर पी रहा है कोई व्यक्ति तो आप बोले अरे भाई तुम जहर मत पियो, तो ये अहिंसा है कि नहीं? अच्छा मैं खुद जहर नहीं पी रहा हूं लेकिन सामने वाला जहर पी रहा है तो मैं चुपचाप बैठा रहा हूं, तो क्या है ये हिंसा है कि नहीं? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसी प्रकार से जैसे माँ अपने बच्चे के पीछे लगी रहती है, वो मत खाओ, वो मत खाओ, ये नुकसानदेह है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो बच्चे को ज्ञान नहीं होता है लेकिन माँ बताती रहती है, क्यों? क्योंकि प्रेम का अनुभव करती है। उसी प्रकार से एक भक्त सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं, इसलिए दयावश उपदेश करते हैं कि आप भगवान कृष्ण की शरण लो, इंद्र तृप्ति युक्त जीवन मत बिताइए। ठीक है, समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है, द्योतित का मतलब होता है लक्षित होती है, ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। अगर टॉयलेट में है कोई व्यक्ति तो किस चीज से राग करेगा? टॉयलेट में है आप तो क्या किससे राग करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, क्या करेंगे, बस अपना काम करके निकलेंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, तो ये जगत है एक टॉयलेट की तरह, शमशान की तरह। हमने कल चर्चा किया था ना, शमशान में कौन सी कब्र पवित्र है? सारी कब्र अपवित्र है, तो इस जगत में सब कुछ अपवित्र है। तो उसमें कोई दिमाग ना लगा करके व्यक्ति भगवान में राग लग करने का प्राप्त करेगा। देखिए बहुत खतरनाक बात है, अगर किसी वस्तु में राग है तो कहीं ना कहीं द्वेष भी होगा, और राग और द्वेष के कारण ही जगत में व्यक्ति फंसा रहता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस जगत का विश्लेषण करना कि ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये भी अच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को बोलते हैं, वहां से मति को हटाकर मति को सीधे कृष्ण में लगाएं। दिस इज द ड्यूअलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी कैन बी एंट्रैप्ड इन इट। ये अच्छा ये बुरा है, ये अच्छा ये बुरा है, ना ऐसी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा अगर कुछ है तो कृष्ण का चरण, कृष्ण भक्ति। हाँ माइक पे पूछिएगा। यस,
भगवान से जिसको राग होगा उसको तो कभी द्वेष नहीं होगा ना किसी से?
नहीं नहीं, वो तो अलग है, वो तो एब्सोल्यूट है, लेकिन यहाँ पे राग और द्वेष इंद्रिय तृप्ति पे आधारित है कि अच्छा ये बुरा है, और ये भी सेंस परसेप्शन है, और आपकी इंद्रियां मेरी इंद्रियों से अलग इन्फॉर्मेशन दे सकती है, ये चीज ठीक है। व्यक्ति कहेगा नहीं ये चीज ठीक नहीं है, होता है कि नहीं होता? आप प्रसादम लेने बैठी तो व्यक्ति कहेगा कि अरे ये वस्तु तो बड़ी अच्छी खाद्य पदार्थ है, तो सर कहेगा नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मुख्य बात यह है कि हर किसी का मन अलग अलग प्रकार का है और वो उस इन्फॉर्मेशन को अलग प्रकार से प्रोसेस कर रहा है। तो धीरे धीरे नाम के द्वारा, नाम साधना के द्वारा व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है। ये सबसे खतरनाक चीज है, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद मोहेन भारत। सारी जीवात्मा इसी जगत में फंसी हुई है इस ड्यूअलिटी के कारण, ये अच्छा है ये बुरा, ये अच्छा है ये बुरा, ऐसा करके। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें। यही राग द्वेष का एप्लीकेशन है, समझ में आ गया? यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है, उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि जो व्यक्ति बहुत आसक्त होता है, रागी होता है, उसके लिए कौन सा मार्ग होता है? कर्म मार्ग, कर्म योग। और जो व्यक्ति बहुत निर्विण होता है, जो बहुत अधिक त्यागी होता है, उसके लिए कौन सा मार्ग होता है? ज्ञान। तो जो भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है वो ना तो बहुत आसक्त होता है और ना बहुत निरासक्त होता है, मिडिल पाथ जिसे कहना चाहिए। क्योंकि बहुत अगर व्यक्ति त्याग करता है तो उसका हृदय शुष्क हो जाता है, कठोर हो जाता है, और भक्ति का उद्देश्य है हृदय को पिघलाना, और हृदय को पिघलाने का कार्य कीर्तन से होता है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, कीर्त्या मतलब होता है बोलना, जातानुरागो धृतचित्त उच्चई, उससे हृदय पिघलता है और उससे भगवान में अनुराग हो जाता है। तो कीर्तन से भगवान में राग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी वस्तुएं हम इकट्ठी करेंगे हर वस्तु आपसे एक इंटरव्यू लेती रहेगी आपका, आपने मेरा उपयोग बहुत दिन से नहीं किया, देखिए तो मेरी तरफ। एक पेन भी एक्स्ट्रा रखेंगे तो वो आपको बोलता रहेगा सिग्नल देता रहेगा कि आपने मेरा उपयोग बहुत दिन से नहीं किया है, कृपया थोड़ा उसको उपयोग कीजिए। तो ब्राह्मण लोग अपने चित्त को खाली रखने के लिए, ताकि भगवान में लग सके, अपने घर को खाली कर देते थे। समझ में आ रहा है? इसीलिए दान प्रतिग्रह, वो दान स्वीकार करते थे, लेकिन ये नहीं कि दान इकट्ठा कर करके पूरा रूम भर लिया, उसको दूसरों में वितरित किया करते थे। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्या कारण है ब्राह्मण गरीब रखते थे अपने आप को? ताकि उनका चित्त भगवान के विचारों से परिपूर्ण रहे। ठीक है, उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। तपस्या का अर्थ है तपसा, तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना है होता है, यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। ये इंटरेस्टिंग है कि प्रभुपाद जी एग्जैक्ट बोल रहे हैं जो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, लेकिन उसको और एक्सपैंड कर देते हैं। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि तपस्या का अर्थ है वेदों के नियमों का पालन करना, लेकिन प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि कौन कौन से नियमों का पालन करना, तो हम देखेंगे कौन से नियम है। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इस संबंध में मेरा छोटा सा कमेंट यह है कि सुबह उठना क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए हम लोग प्रकृति से रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, तो जब हम सुबह के सतोगुण का संग करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सतोगुण में होते नहीं हैं, हम सतोगुण में होते नहीं हैं, लेकिन हम सतोगुण का संग करते हैं जानबूझ करके, तपस्या करके, और फिर उससे हमारे चित्त में सतोगुण की वृद्धि होती है। और हमने क्या सीखा था? सतोगुण की वृद्धि मतलब ज्ञान की वृद्धि। व्यक्ति देख पाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश दिस पॉइंट? इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले भक्ति में व्यक्ति को सतोगुण में स्थित होना पड़ता है। उपदेशामृत में समझाते हैं ना इंट्रोडक्शन, उसके बाद उच्चतर बातें समझ में आती। इसीलिए सुबह उठना बहुत आवश्यक है, इसलिए नहीं कि आपकी अटेंडेंस होगी, इसलिए क्योंकि हमें प्रगति करनी है, हमें अपने चित्त में सतोगुण को बढ़ाना है, और फिर शास्त्र की बातें भी समझ में आती। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोझा नहीं लेना चाहिए। भले ही तपस्या है लेकिन बोझा नहीं लेना चाहिए। ओके, इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग अनशन उपवास करते हैं, क्या अनशन बोलते हैं ना, अनशन उपवास, जब तक मर नहीं जाए व्यक्ति, ऐसे करके आमरण अनशन। हाँ, उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। ये बात आगे भगवद्गीता में बताते हैं, सब रजोगुणी होता है। भगवद्गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला होता है, बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी इस बात को बहुत बार बोलते हैं कि भक्ति करते हुए भी हमें सतगुण का अनुशीलन करते रहना चाहिए। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, नाम जप कर रहे हैं भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा भक्ति में बड़ी तेजी से प्रगति होती है, एटलीस्ट दैट मच शुड बी देयर। और अगर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा हो तो फिर तो क्या नहीं क्या, बहुत तेजी प्रगति होती है। मैं संबंध में ये कमेंट करना चाहता हूं कि देखिए अभिधेय हाउ टू इज भक्ति, हाउ टू डेवलप ह्यूमिलिटी, नम्रता कैसे हम बढ़ाएं, द्वेष से रहित कैसे हों, हरि नाम में रुचि कैसे बढ़ाएं, इसका केवल एक ही अभिधेय एक प्रोसेस है, और वो है शुद्ध भक्ति का अभ्यास। अभ्यास, और वो आप जानते हो, समझाने की जरूरत नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्य। तो इसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक के पहले अर्थों को, शब्द के अर्थ को समझे, और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें, तो बाकी सारी चीजें अपने आप होंगी। क्या प्रमाण है? यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुणैर तत् समासते सुरा हरव भक्त सकुतो महत गुणा मनोरथेना सती धावतो वही। तो जो व्यक्ति भगवान का किंचन भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, उसके अंदर सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हाउ टू का एक ही अर्थ है, ठीक से भक्ति को का अनुशीलन किया जाए। ठीक है, जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए, और यह शुभ कार्य है क्या, यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। आचार्य समझाते हैं दान का अर्थ है योग्य व्यक्ति को दान देना, तो प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि योग्यता का अर्थ क्या है, कृष्ण भावना के लिए देना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर पाता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोनेशन स्वीकार करके। जब कोई आपको डोनेशन देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगा दे देना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को लाभ हो आध्यात्मिक और एक दिन वो भक्ति करने के योग्य बन सके। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है, क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो, ये तो स्पष्ट है। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए, यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। मतलब वो ब्राह्मण सदाचारी होना चाहिए, उसका उपयोग दान का वो भगवान की सेवा में करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आजकल लोग केवल मतलब हर प्रकार का घृणित कार्य करते हैं और फिर कहते हैं ब्राह्मण है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए, वह क्यों, क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, ब्राह्मण लोग फ्री का खाने वाले नहीं थे, उनको आध्यात्मिक अनुशीलन में इतने रचे पचे रहते थे कि पैसा कमाने के लिए उनकी बुद्धि लगाने की उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती थी। और अन्य लोग स्पेशली क्षत्रिय और वैश्य धन कमाते थे तो उस धन को ब्राह्मणों को देने से उनके धन की शुद्धि हो जाती थी। उनकी ऐसी मति नहीं है कि हमेशा आत्म साक्षात्कार के लिए वो जुटे रहें। समझ आ गया? जैसे जब आप लोग पढ़ाई करने जाते हो तो आप लोग नौकरी क्यों नहीं करते हो? क्योंकि पढ़ाई करने के बाद समय कहां मिलेगा कि नौकरी करेंगे। उसी प्रकार से ब्राह्मण लोग शास्त्र अध्ययन में और उसको समझने में इतने लगे रहते थे और इसका प्रचार करने में इतने लगे रहते थे कि उनको धन कमाने के लिए कोई जरूरत नहीं होती थी। और ध्यान देना चाहिए कि वो ब्राह्मण पहले से अपने को गरीब रखने में, गरीबी में ही रखता था, सिंपल जीवन जीता था, ताकि उसका समय अधिक अधिक भगवान के बारे में समझने में जाए और दूसरों को समझाने में जाए। ब्राह्मण से आशा की जाती है कि वह सारा जीवन मनी जिज्ञासा में लगा दे। मनी जिज्ञासा लिखा है क्या? ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। यस, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मण को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिलता। ये मैं समझा दिया अभी। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, क्योंकि गृहस्थ गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। आजकल थोड़ा स्टाइल अलग हो गया है, भक्त लोग तो कार से उतरते हैं, टवेरा से, तो लेकिन फिर भी डोनेशन लेके आते हैं। अब भाई देखिए, टवेरा चलाने के लिए भी डोनेशन चाहिए हमको। बट पॉइंट इज दैट कि प्रभुपाद जी बोले थोड़ा उसका रूप बदल गया है, वो पुस्तक वितरण करते हैं भक्त लोग और ज्ञान वितरण करते हैं। ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भक्तों का। तो केवल मन में एक यही चिंता होनी चाहिए कि कैसे इस ज्ञान का वितरण अनेक अनेक लोगों के पास होगा, क्योंकि बिल्कुल अज्ञान में लोग बैठे हुए और समय व्यर्थ कर रहे हैं। Okay. वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है, अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। सनक मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी भगवान की सेवा के विरुद्ध कोई भी और कार्य है तो सनक ही है, क्योंकि उससे व्यक्ति का असली सदगति नहीं होती है। मैं भी क्या कुछ बोलने वाला था, खैर भूल गया, चलिए। यशस भगवान चतन के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि या यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। लेकिन आप जानते हैं कि भक्त लोग शुद्ध भक्ति करते हैं यश प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन उनका यश अपने आप फैलने लगता है। ठीक है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। ऐसा जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि युधिष्ठिर महाराज आज से 5000 साल पहले हुए और प्रहलाद महाराज चाक्षुष मनवंतर में हुए थे। कल ही मैंने इसको पढ़ा। तो आज भी हम प्रहलाद महाराज के बारे में जानते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के बारे में जानते हैं, तो भगवान का शुद्ध भक्त होना, ध्रुव महाराज के बारे में जानते हैं, यही सबसे बड़ा यश है व्यक्ति के लिए। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। चर्चा किया था मैंने अभी ना कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है अपने आप गुण प्रकट हो जाते हैं, किंतु मनुष्य को तो उन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। अर्थात समझ में आ गया ना, अभी देह क्या है, क्लियर है, शुद्ध भक्ति भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान स्वयं है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान स्वयं बोल रहे कि सारे गुण उनसे आते हैं, तो भगवान स्वयं ही उन गुणों का विकास कर देंगे भक्त के हृदय में। जैसे एक माँ अपने अपने हाथों से अपने बच्चों के कान में, नाक में, गले में सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती है। समझ में आ गया, माँ अपने ही बच्चे के कान में कौन बनाती है, माँ ही पहनाती है ना, छोटे बच्चे के कान में बनाएगी, नाक में पहनाती है, गले में पहनाती है, क्योंकि प्रेम होता है। तो क्या चाहती है कि उसका बच्चा खूबसूरत दिखे। तो ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं ही इन सुंदर गुणों के से हमको आभूषित कर देते हैं। मेक सेंस? हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी गुण देख रहे हैं तो हमें से द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर हम द्वेष करते हैं तो हम लोग कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि वो वस्तुएं आभूषण के रूप में उस भक्त के हृदय में भगवान के द्वारा दी गई हैं। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा कुछ भी करता है, तो अगर हम उसे द्वेष कर रहे हैं तो हम वस्तुतः कृष्ण से ही द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कृष्ण की विभूतियों को अपने का प्रकटीकरण कर रहा है कृष्ण की इच्छा से। सो शैल स्टॉप हियर। श्रील